चंद चीज़ें जो हमें आज के सबक में से थोड़ी सी ज़रूरत है उन पे बात करने की। पहली बात हमने की आज के सबक में कि किस तरह से लोग अपने दीन के मुकाबले में ख्वाहिशात को ले लेते हैं, और इसमें हम सब के लिए अमल की यही बात है। आप अपने सामने सबक खोलें ताकि तरतीब के साथ हम आयतों को देखें, जब रिकैप में तो हमें पता चल जाए कि हम कहाँ से कर रहे हैं और क्या बात इस वक्त हमारे सामने। पहला मौजू हमारा आज का क्या था कि जब अल्लाह सुबहान ताला किसी भी कौम को कोई दीन देता है तो उस दीन के अंदर बहुत सारी रुख्सतें मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ लोगों पर जब ख्वाहिश का गलबा मौजूद होता है तो वो लोग अल्लाह के दीन की हर वो चीज़ जो उनकी ख्वाहिश के रास्ते में आती है उसको बदलते जाते हैं। तो उसके अंदर हमने जो मिसालें देखी थी उस सब को सामने रखते हुए अगर हम आज अपना मुहासबा करके देखें कि क्या वाकई मैं अल्लाह के दीन की कोई बात जिसको मैं अपने रास्ते में मुश्किल समझती हूँ बदल तो नहीं देती। देखिए कि हम सब इंसान हैं और अल्लाह सुबहाना ताला को हमारा खूब पता है, इसलिए ये नहीं होगा कि एक ही दिन हम बिल्कुल सब गुनाह छोड़ देंगे और गुनाह प्रूफ इंसान बनेंगे। असल चीज़ वो याद रखें कि मुत्तकी वो होता है कि जिसको अपनी इस्लाह की फिक्र लग जाए, लेकिन मौका मिले इस्लाह का और इस्लाह ना करना मौके को खोने के बराबर होता है। और ख़ास तौर पे जब इस किस्म की चीज़ें जो आज हमारे इस टॉपिक में आ रही हैं जिसमें स्टाइल ऑफ लिविंग की बात है और ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी होती है, तो उसके अंदर हम हमेशा ये चीज़ याद रखें कि दीन जो है वो सिर्फ एक जुबान से कोई बात कहने या कहलाने का नाम नहीं है। असल दीन जो है वो जिंदगी गुजारने का तरीका है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ये बाकी जो चीज़ें ना, ये हमारी ट्रेनिंग है। तो अगर हम ट्रेनिंग के नाम पे ट्रेनिंग तो खूब कर रहे हैं, फ़र्ज़ के साथ साथ नफिल भी पढ़ रहे हैं, सुन्नतें भी अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर हम उस पे अमल नहीं कर पाते तो बिल्कुल फिर वही बात है कि हम अपने ऊपर ज्यादती करेंगे। तो ज़िंदगी को दीन के ताबे करना है इंशाअल्लाह ताला। मुश्किल तो लगता है, आप देखिए कि आपको मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ अपने याद रखने के लिए कि कैसे अपनी ज़िंदगी में अमल लेके आएं और हमें कैसे पता चले कि जो ज़िंदगी हम बसर कर रहे थे वो ठीक नहीं है, पता चल गया तो क्या करें। मिसाल दीजिए कि आप जैसे सोचिए कि आपका घर है, एकदम आपको महसूस होता है कि कुछ क्रैक्स आ रहे हैं दीवारों में, आपको फिक्र होती है, खैर आप थोड़ा और चेक करते हैं, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि आप हमारे घर को चेक करें कि इसमें क्या समथिंग इज रॉन्ग, और अगर वो आकर ये बता दे कि जिस घर में आप रहती हैं इसकी बुनियादें खराब हो रही हैं, इसकी बुनियादों में कोई नक्स हो गया है, क्या करेंगे आप? क्या आप उस घर में रहना और वहीं और उसकी दीवारों से और चूंकि इतने साल से रहती थी ये करेंगे, या आप सबसे पहले अपने आप को महफूज करेंगे? राइट, बुनियादें खराब होती हैं ना तो घर पूरा गिर जाता है। इसी तरह जब दीन की बुनियाद जिसको हम अकीदा कहते हैं वो खराब होता है ना तो हमारा पूरा घर खराब होता है। और ये जो इस वक्त हम एक जिहाद कर रहे हैं अपने नफ्स से, मुआशरा कुछ और कहता है, सोसाइटी कुछ और कहती है, दोस्त कुछ कहते हैं, ये बिल्कुल वही है कि जैसे अब हम एक नया घर बना रहे हैं ऊपर। ये नहीं हो सकता कि पुराने घर में ही नए दीन के साथ बंदा रहे, वो निफाक के साथ तो रह सकता है, ख्वाहिशात के साथ नहीं रह सकता। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो इसमें मौजूद था आज हमारे पास कि नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात की क्या हदूद है, तो इसको समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने इस पे हमें जो बात कही है, पहली बात जहन में रखिए कि सब बंदे अल्लाह के पैदा करते हैं, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि माँ के अपने बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला को इंसान होने के नाते किसी इंसान से कोई चिढ़ नहीं है ना नफरत है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को अपने हर बंदे से इतना प्यार है कि जितना 70 या 90 माह तक का भी लफ्ज आता है कि उनको अपने बच्चों से प्यार होगा। इतनी बात वाज़ेह, क्योंकि ये मौजू बहुत ही ज्यादा लोगों को चुभता है कि लो जी काफरों से हम क्यों ना करें कि अल्लाह ने नहीं बनाया। तो बिल्कुल यही बात तो आपको बताने लगी हूँ कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंभ है, मोमिन काफिर फासिक फाजिर जो भी है, बींग अ ह्यूमन, ठीक है, जिसको आप ह्यूमन बींग कहते हैं, अल्लाह को सबसे प्यार है, बिल्कुल एक फितरी मोहब्बत है और अल्लाह ताला सबकी भलाई चाहता है। ये दूसरी बात है। अगली बात ये कि अल्लाह ताला ने किसी को आग के लिए पैदा नहीं किया, ये लोगों की अपनी च्वाइस और अपना तरीका है। फिर अगली बात नोट करें कि अल्लाह ताला ने हर एक पे हुज्जत तमाम की है, इंशाल्लाह किसी मौके पे उस पर एक अलग बात करेंगे हम। छोटी सी आज की बात में मैंने शेयर की थी कि अल्लाह ने रसूलों को जो भेजा उसका मकसद क्या बता दिया कि लोगों को ये हुज्जत ना मिले कि क़यामत के दिन ये कह सकें कि अल्लाह ताला हमें कोई बताने वाला नहीं आया, ठीक है? ये सारी बातें, चार तमहीदें हैं हर एक के अंदर जो उसको अल्लाह की तक पहुंचाती हैं, फितरत, अकल, वही, इंस्टिंक्ट, कायनात, बोल बोल के बता रही है कि अल्लाह है। इसके बाद अगर कोई बंदा खुद अपने लिए एक लाइफस्टाइल समझकर कुफर का रास्ता इख्तियार करे तो उसके साथ ताल्लुक की क्या हद है। पहली चीज देखिए कि इंसान मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनके साथ ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं। आप एक खानदान में रहने के बावजूद भी खानदान की हर सिस्टर के साथ एक जैसा ताल्लुक नहीं रखते। किसी से आपका सुबह शाम का ताल्लुक है, किसी से आप सिर्फ ग्रोसरी उनके साथ जाती हैं करने, किसी के साथ सिर्फ आपको कुकिंग की चीज शेयर करती हैं, फर्क होता है ना। तो इंसानी ताल्लुकात के कई दर्जे होते हैं। पहले चार दर्जे लिखिए, फिर इंशाल्लाह आप इस पर बात कर सकेंगे कि हम कौन सा रखते हैं। सबसे पहला दर्जा जो किसी भी जगह किसी सोसाइटी में इंसानों का इंसानों के साथ होता है ना, वो है मुआमलात का। इंग्लिश में आप कहेंगे डीलिंग, वर्किंग, बिजनेस रिलेशनशिप्स, तिजारत का मामला, खरीदो फरोख्त का मामला, राह चलते हुए किसी से रास्ता पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, दिस एंड दैट। अब ये ताल्लुक कौन सा होता है कि जहां आप बस किसी से कोई बात पूछते हैं, जब कोई बता दे उसके बाद तुम कौन और मैं कौन। और हम इन गाड़ियों में, बसों में, स्कूलों में अमूमन लोगों के साथ इस तरह की डीलिंग करते हैं। ग्रोसरी पे गए, सामने कोई दिखा, देख लिया उसको, हेलो, हाय, बाय, शाय कर दिया, ठीक, खत्म। इसको कहते हैं मामला। हर एक से जायज है, हर तर जिगर वाले पे रहम फर्ज है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। तो मामलात में किसी किस्म का भी कोई मामला नाजायज नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के साथ तिजारत का मामला अल्लाह के नबी ने खुद किया। मक्का में तिजारत जो होती थी वो मुल्क शाम से और दूसरी तरफ से यमन से होती थी, नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है। तो ये डीलिंग्स हो सकती हैं। आपके ईमान का दर्जा अलग है। मिसाल, एक चीज़ आपको मुस्लिम स्टोर से भी मिलती है और आपको एक नॉन मुस्लिम स्टोर से भी मिलती है। अब फिर यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगी, इंसान भी फर्क है ना। कोई कहेगा पैसे बचाते हैं कि भाई मुस्लिम स्टोर वाला सस्ती महंगी बेचता है, ये नॉन मुस्लिम बहुत सस्ती बेचते हैं। और उसकी वजह भी समझ आती है कि मुस्लिम स्टोर बेचारे के पास कुल 20 चीज़ें हैं और नॉन मुस्लिम स्टोर पे 20,000 हैं, तो उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ जाएगा। तो लिहाजा ये बाप के मर्जी है, लेकिन इजाज़त मौजूद है। आप कहते हैं कि मैं कोई पैसा बनाती हूँ देती हूँ तो वो मुस्लिम स्टोर को फ़ायदा है, मुस्लिम को फिर दर्जे हैं। जैसे एक शॉपिंग है तो आप उसको भी कितने डिफरेंट लेवल्स पे ला सकते हैं। आपकी शॉपिंग आपके लिए सवाब का सबब भी बन सकती है, ठीक है। दूसरा, आप उस तल्लुक में ये सोच सकते हैं कि देखो इन्होंने तो शराब भी रखी हुई है, ये भी है, वो भी है, और एक मुसलमान हक हलाल की रोजी कमा रहा है, चलो मैं वहां से ले लेती हूँ। अगर चीज एक है, आपको क्वालिटी सेम दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर डीलिंग नहीं अच्छी, ये आपको हाय बाय हेलो बहुत अच्छा कहते हैं, इनके स्टोर्स बहुत अच्छे हैं, आपको खरीदना आसान है, उसके बरक्स मुसलमान आपको इतना प्रोटोकॉल नहीं देता, तो वहां फिर आपका अपना ईमान है, चलो कोई बात नहीं, मेरे इस्लाम, मेरे मुसलमान का फायदा। चलो 4 पैसे ज्यादा लेगा तो मेरे मुसलमान भाई को मिलेंगे ना, शराब तो नहीं खरीदेगा जाके, इससे कोई माँ का ही फायदा, कोई बीवी को दे देगा। ये दर्जे हैं फिर, लेकिन बहरहाल डीलिंग्स इज अलाउड, ठीक है। इसमें वो सारे सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं, आप में से भी कई लोगों के जहनों में होंगे कि हम कहीं जाके कैसे खाएं पिए, वहां शराब बिकती है, वहां ये लेते हैं वो होता है। तो वही बात अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि फत्तकुल्लाह मस्तता वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अपने आप को अल्लाह ताला से खुद जोड़ ले। दूसरा दर्जा जो होता है किसी इंसान का इंसान के साथ, वो है मदारत का। मदारत उर्दू में बोलते हैं खातर मदारत, हम उनके घर गए, उन्होंने हमारी बड़ी मदारत की, ठीक। ये क्या होती है? हॉस्पिटैलिटी, खुश अखलाकी, हेलो, हाय, हाउ यू डूइंग, दोस्ताना बर्ताव कह लीजिए, जानने वाले अनजाने हर एक से आप करते हैं, अजनबियों से भी होता है, दूसरों से भी होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इस्लाम ने कुछ अदब बताए। मुसलमान मुसलमान के साथ ये मामला किस लेवल पे करेगा? वेल एंड गुड, सब जगह मिलिए, जहां मिले इस्लाम करें। बल्कि एक जगह हदीस में आता है कि कयामत की निशानियों में है कि लोग सिर्फ जानने वालों को सलाम करेंगे, ठीक है, लेकिन हुक्म क्या कि सबको करो। नॉन मुस्लिम है, वो आपको हेलो कहता है आप हेलो कह दे, वो हाय कहता है आप हाय कह दे, वो बाय कहता है बाय कह दे, खुद से बढ़ के उसको सलाम अलैकुम कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सलाम उसने पसंद ही नहीं किया। सूरत निसा में आप इसके सारे अहकाम और डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मदारत चल सकती है। बल्कि आप और मैं नॉन मुस्लिम्स की मदारत कैसी करें कि जिससे उनको इस्लाम अच्छा लगे। अभी सैटरडे को हम एक जगह दर्स में थे, तो बहुत ही खुशी हुई मुझे कि जो हमारी होस्ट थी उन्होंने अपनी नेबर को बुलाया हुआ था जो इंग्लिश थी लेडी, देखने में वो जो लोग थे वो खुद ही सुनाएंगे कि उस दिन क्या हालात थे। बहुत इंजॉय किया हमने और मैंने कल के दर्स में भी थोड़ा सा सुनाया था, अगर कहीं रिकॉर्डिंग मिले तो आप सुन लीजिएगा। यानी बहुत अच्छा रहा, और मैंने देखा कि वो जितने शौक से हमारे खाने खा रही थी, हमारे अपने साथी भी शायद इतने शौक से ना खाएं। हो सकता है ये खाने ही उनको ले आए। इसी तरह एक नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हुए तो उन्होंने कहा कि पुलाव खाकर मुसलमान हुआ था, कि जो कौम इतना अच्छा पुलाव बना सकती है फिर उसका दीन कितना अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह एक नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम हुए उनका मैंने पढ़ा, तो उनके बारे में सुना, तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं जा रहा था, तो शायद कश्ती थी या बहरी जहाज था या वट सोएवर कोई भी, तो कहते मेरे सामने और भी लोग थे, तो जहाँ वक्त आता है लोग अपना निकालते हैं और खाने लग जाते हैं, तो कहते कि एक ब्लैक मुस्लिम था, यानी सोमाली ब्रदर होगा या अफ्रीकी होगा, तो जब भूख उसको भी लगी सफर में, तो उसने अपने पोटले में से पोटला खोला तो उसमें रोटी थी, रोटी के ऊपर उसने कोई चीज रखी जो भी होगा आई डोंट नो, तो उसने उसको तोड़ के ना, तो उसको एक नेपकिन पे रख के ना, तो आधी रोटी मुझे दी, मेरे आगे रखी कि ये आप खाएं। तो इसका ये अमल मुझे सोचने पे माइल कर गया कि बाकी सारे बस या जो भी बैठे हैं शिप में, उन्होंने मुझे नहीं पूछा तो इसको किसने बताया, तो मेरे दिल में इस्लाम का एक नरम गोशा हुआ। और हकीकत अगर चलते फिरते हम सब अपने आप को इस्लाम के नुमाइंदे समझें, तो ये चीज़ें हम कभी भी इग्नोर ना करें। कोई आपके घर पोस्ट लेके आता है ना, हेलो हाय ओके लेट मी आई, जो वो पीते हैं उनको दे दें, जो खाते हैं कोई बंद चीज़ दे दें, खुली ना दें, चॉकलेट दे दें, कोई ड्रिंक दे दे, पानी दे दे, सिर्फ इस्लाम का एक इमेज बनाए। बाज़ जगह हम अपने इस्लाम का इमेज बनाते भी हैं और बाज़ जगह बिगाड़ते भी हैं। ठीक है, तो मदारत कीजिए सोच के साथ के फायदा हो। अपने नेबर्स को खाना भेजते हैं, हम कितना भेजते हैं, हम उनको भेजते हैं, मेरे नेबर में एक पाकिस्तानी है मैं उनको भेजूंगी और वो मुझे भेजेंगी, हमारा तो आपस में चलता है ना। आप भेज के देखें, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर हम नॉन मुस्लिम्स को अपने खाने इस नीयत से देना कि ये खाना पिलाना उनको इस्लाम के करीब लाएगा, तो वो बेचारे तो इस तरह रोज खाते भी नहीं है जो हम पका के खाते हैं, उनके पास तो हॉट डिनर सिर्फ शायद वीकेंड्स पे होता है। ठीक है, तो ये मदारत का ताल्लुक भी हो सकता है। इस तरह आप किसी के घर के नॉन मुस्लिम्स में से, अब आपको उन्होंने कोई चीज पेश की, मेक श्योर कर लीजिए कि चीज हराम नहीं है, खा ले पी ले, लेकिन अगर उसमें दो तरह की खराबी है, यानी उसके इंग्रेडिएंट्स खराब है, पेक का गोश्त है, शराब है, लीकर है, व्हाटसोएवर, और दूसरी चीज यह है कि वो जैसे वो किसी की भेंट चढ़ी भी है, मतलब उसको उन्होंने किसी बुत के नाम पे रखा है कुछ, तो फिर आपको सबको हमको अकल है कि उसको किस हद तक लेना है। तीसरा दर्जा जो होता है ताल्लुकात का इंसानी मामलात में, वो है मवासात का ताल्लुक। मवासात कहते हैं हमदर्दी को, खैर ख्वाही, विसादा, गहरी दिली दोस्ती। ये कब होता है, किसी पे कोई मुश्किल आ गई, कहीं जलजला आ गया, गैर मुल्क मुस्लिम थे अब सारे बेचारे बेघर पड़े हैं, सर्दी है तो भूखे हैं, भूखा है, कोई बाहर गए आपने देखा रोड पे कोई बैठा हुआ है भूखा है, कपड़ा नहीं पानी नहीं, कीजिए हमदर्दी, खाना दें, कपड़े दें, घर दें, कोई डोनेशन मांगता है कोई दें, कुछ सड़कों के किनारे आपने देखा होगा कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं भीख मांगने, तो ये भी जायज़ है, सबके साथ जायज़ है। ठीक है, इंसान है ना। तीन दर्जे जायज़ के, एक आखिरी दर्जा होता है इंसानी ताल्लुकात का, जिसको आप विलायत का दर्जा कहते हैं। विलायत, ये जो यहाँ लफ्ज आया आपके सामने आयत में, वो भी यही लफ्ज है कि मोमिन क्या ना करे, औलिया ना बनाए। ठीक है, इसी को कुरान ने विलायत कहा है, वलामिया, इसी को बिताना कहा है, आगे हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान में भी आएगा और सूरह मायदा वगैरह में भी आगे आएगा। ठीक है, बिताना भी इसको कहते हैं, बतन से हम रास, दिली दोस्ती, कल्बी ताल्लुक, गहरा ताल्लुक। ये किसी के साथ ताल्लुक का वो दर्जा होता है कि जिसमें बीच में कोई अजनबियत नहीं रहती। ठीक है, आप उनसे मुतासिर, वो आपसे मुतासिर, वो आप जैसे आप उन जैसे, और आप उनको अपने राज देने लग जाएं, आप उनकी बातों पे अपना अकीदा बदले, ये जायज नहीं है। ओनली द फॉरबिडन रिलेशन इज विलायत, कि जहां मोमिन का ताल्लुक काफिर से इस हद तक हो जाए कि बिल्कुल वैसा ही बन जाए, खाना पीना, बोलना चालना, तरीका जिंदगी, सब कुछ उन जैसे मिल जाए, ये जायज क्यों नहीं है, फिर मुसलमान वैसा रहेगा जैसा होगा। हदीस में आता है कि तो इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो वो दीन का दोस्त, उसके ऊपर आपका ताल्लुक होगा। आज मुसलमानों में बिगाड़ कहाँ आया, कि जब उन्होंने पिछले तीन ताल्लुकात से ज्यादा विलायत का दर्जा रख लिया, वेव लेंथ ही नहीं मिलती मुस्लिम से मुस्लिम्स की, कुफार अच्छे लगते हैं, अपने अपने लगते हैं, उनका ड्रेस कोड बड़ा फेमिलियर है, बाहर पहन के जा सकते हैं, अपना नहीं पहन सकते, घर में पहनते हैं, कंफर्टेबल है पाकिस्तानी ड्रेस अप या मुस्लिम ड्रेस अप। आपको पता है कि जैसे औरतों के लिए सतर है ना कि जिस्म को छुपाओ और आपके फिगर ना दिखे, सी थ्रू, और दूसरा ना, मर्दों के लिए भी सेम है। अब एक मर्द है, वो अगर टाइट्स पैंट्स पहनता है, पूरा फिगर उसका उसमें दिखता है, नमाज पढ़ेगा तो पीछे से कमर दिखेगी, उठेगा। अब इसको क्यों अलाउ कर लिया? क्योंकि सोसाइटी में इट्स इन। एक लड़की है, मुसलमान लड़की है, वो सिर्फ बाहर जाती है तो पैंट्स और टाइट्स इस सोच से पहन के जाती है कि मैं लोगों को अपनी अपनी लगूं। ये नहीं जायज, ये जुल्म है। वयुहज़्जिरुकुम अल्लाह नफ्सा, फिर अल्लाह आपको डराता है कि तुम्हें मेरा बनने में शर्म आती है और आप गैरों का बनने में तुम्हें कैसा लगता है। आम हालात में मैंने लोगों में एक चीज ऑब्जर्व की है कि जब किसी से बिगाड़ आता है ना, बिगड़ते हैं, ताल्लुक अच्छे हों तो बड़े खुश, तो जब बिगाड़ होता है ना तो उसकी दी हुई चीज भी फेंक देते हैं, कहते हैं ये मैं नहीं पहनूंगी, हमारी बेटी को इन्होंने दुख दिया, इनके घर का जोड़ा हम नहीं पहनते। सुना भाई, ना इधर हदों पे रहते हैं ना उधर हदों पे रहते हैं। एक बेटी को ठुकराने वाले को आप इतनी नफरत से देखें, तो जो दीन को और अल्लाह को ठुकराता है, असल मसला पीछे फिर अकीदा है। चूंकि हमें खुद अल्लाह से इतना प्यार नहीं है, तो जो अल्लाह से प्यार करे वो हमें प्यारा नहीं लगता। चूंकि हमें अल्लाह की नाफरमानी से खुद खौफ नहीं आता, तो दूसरों की भी बुरी नहीं लगती। अदरवाइज कोई मुफ्ती नहीं है दुनिया का जो आपको इस मसले पे फतवा दे दे। हलाल हराम का मसला नहीं है ये, तकवा की बात नहीं है, फतवा की बात नहीं है, ये तकवा की बात है। जिससे जिसको जिसको अल्लाह से प्यार होता जाएगा, दिन ब दिन नॉन मुस्लिम स्टाइल ऑफ लिविंग उसको पसंद नहीं रहेगा, और ये फतवे नहीं पूछेगा अलाउड और नॉट अलाउड। हमने कभी ये पूछा कि माँ से प्यार करने का क्या दर्जा है, अलाउड है कि नहीं? बच्चों की खिदमत करना अलाउड है कि रिकमेंडेड है कि क्या है? कर रहे हैं ना, बीवी के लिए खाना लाना, मेहनत करना, किस दर्जे की कर रहे हैं? ये हमारी फितरत में गुंदी हुई चीज है, बिल्कुल इसी तरह। और खास तौर पे इसमें बदतरीन ताल्लुक वो हो जाता है जिसमें उनसे दोस्ती इस तरह की हो कि जिसमें इस्लाम को नुकसान हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सूरत अल मुमताहना में आप एक वाकया डिटेल से पढ़ेंगे खातिब बिन अबी बलता के बारे में। सिर्फ इस सोच के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पे हमला करेंगे तो जीत तो नबी की होगी, ईमान था। लेकिन चूंकि इनके बच्चे मक्का में फंसे हुए थे, तो इनको डर था कि मक्का वाले कहीं मेरे बच्चों को पकड़ ना लें, क्योंकि इनका आपस में कोई माहदा नहीं था। तो एक एहसान करने की खातिर उन्होंने कह दिया कि भाई नबी सल्लम आ रहे हैं, अपना इलाज कर लो, अपना बचाव कर लो। सिर्फ इतनी सोच थी, लेकिन इस पर अच्छी खासी पकड़ हो गई। आयतें उतर गई कुरान में कि ये क्या बात है, ये अल्लाह के दुश्मनों से भी दोस्ती करते हैं और अल्लाह के साथ भी दोस्ती की बात करते हैं। इसी तरह रिवायात में आता है कि हजरत अली ने एक बार अबू जाहल की बेटी से निकाह की ख्वाहिश की थी, तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि नहीं, अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के दुश्मन की बेटियां एक शख्स के निकाह में साथ नहीं रह सकती। तो आज जो मुसलमानों में खिचड़ी पकी हुई है ना, उसकी वजह ये ताल्लुक के दर्जों में कमी बेशी है। अभी पहली दफा ये मौजू आया है, आगे भी आता रहेगा। अपने लिए ये रखें कि मैंने अल्लाह से मोहब्बत बढ़ानी है। जिससे प्यार होता है उसके प्यारे भी प्यारे लगते हैं, भाई बहनों के बच्चे जैसे भी हों हमें प्यारे लगते हैं, राइट? गैर का बच्चा जितना भी प्यारा हो मजा भी आएगा, लेकिन उसके लिए दिल में वो हूक नहीं उठती जो अपनों के लिए उठती है। तो बस अल्लाह से प्यार होगा तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बात मानने वालों से भी प्यार होने लगेगा। हदीस में आता है कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, दिया तो अल्लाह के लिए, रोका तो अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को बेहतरीन कर दे, ठीक है? बाकी नमाज की ज़िंदगी और रोज़े की ज़िंदगी और अमली ज़िंदगी की ज़िंदगी और ये बिल्कुल फ़र्क है। ये मज़मून ख़ास तौर पे हम पढ़ेंगे सूरह मुमतहना में, सूरह मुजादला में और सूरह तौबा में, और इंशाल्लाह कुछ इशारे सूरह मायदा में भी मिलेंगे। और ताल्लुक़ रखने की सूरत एक इधर बता दी, इल्ला अन तत्तकु मिनहुम तुकात, अपनी जान बचाने के लिए, इनके शर से बचने के लिए, यानी दिली ताल्लुक नहीं होगा, फिर भी मजबूरी का ताल्लुक होगा। अब आप कहते हैं चॉइस है, क्या करें, किधर जाएं, इधर रहें उधर रहें, ये मौजू सूरह निसा में बहुत डिटेल से आएगा, हिजरत, कि हम कहाँ रहें कहाँ ना रहें। लेकिन अपनी जान और माल को बचाएं और अपने अकायद को बचाएं। जितना तेजी से इंट्रेक्शन हो रहा है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सोसाइटीज का, तो हमारी बच्चों के अफकार बदल गए, उनके ट्रेंड्स बदल गए, हमें नहीं पता चल रहा। अभी इसी सूरत में आएगी एक आयत, अल्लाह कहते हैं खबाल, यानी ये मत मार देते हैं, बिल्कुल यही लफ्ज है, यानी किसी की अक्ल को यूं ट्विस्ट करना कि बंदे को समझ ही ना आए कि मेरा अच्छा क्या मेरा बुरा क्या। ये हो रहा है आज हमारे साथ, तो इस पे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और इस्लाम का इतना दर्द डाल दें। अभी हमारा ट्यूसडे को सैटरडे को जो दर्स था, तो वहाँ यंग बच्चियाँ भी थी और वो सिस्टर भी थी जो अमेरिकन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरा दर्स इंटरेक्टिव किया। जो साथी थे वो इसकी ज़रूर गवाही देंगे कि वो कितना फ्रूटफुल रहा। यंग बच्ची, एक ही सवाल पूछा था बच्चियों से कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में इस्लाम का कितना दर्द है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अगर आपको उसकी रिकॉर्डिंग कहीं नजर आई तो जरूर सुनिएगा। जो दुआ मैंने आपसे वादा किया था कि अल्लाह के नबी ने सिखाई, हजरत मास को ये कही थी, घबराइएगा नहीं सुन के। अगर आप में से किसी के पास अहसनुल बयान नाम का तफसीर का कुरान है, तो उसमें भी ये दुआ मौजूद है कि जब हजरत मास ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का शिकवा किया कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत है। आज है किसी पे कर्ज? लेकिन ये दुआएं भी तब पढ़ी जाएंगी जब फिर हम अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान रखेंगे। तो बहरहाल आपने कहा कि अगर तुम ये दुआ कर लो, क्या है दुआ, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क के बाद यानी तूली जो लैला फिर नहार वाली आयत पढ़ के, रहमान अद्दुनिया वल आखिरती व रहीमहुमा तुती मन तशाउ मिनहुमा व तमनाउ मन तशाउ इरहमनी रहमतन तुगनिनी बिहा अन रहमतिम मिन सिवा अन रहमत मन सिवाक अल्लाहुम्मा अग्निनी मिन अल फक्री वक्दी अन्नद्दैन। तर्जमा क्या है इसका कि दुनिया और आखरत के रहमान और इन दोनों में रहम फरमाने वाले, तो जिसको चाहता है अता करता है और जिसके चाहता है उससे रोक लेता है, मुझ पे रहम कर अपनी वो रहमत के जो मुझे दूसरी चीज़ों से बेनियाज कर दे। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे बेनियाज कर दे फकीरी से और मेरे कर्ज को अदा कर दे। तो हदीस में आता है कि अगर बहुत पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला उसका अदा करवा देगा। शर्त यही है कि आगे से आप कर्जे लेने छोड़ें, पिछलों को अदा करें। कभी भी जिंदगी में, अब ये ना कि ये दुआ का वजीफा मिल गया तो अब चलो छोड़ते हैं फिर करते हैं, वो सारी आयतें पीछे वाली याद रखें, ठीक है। और आखिरी बात के बाद इंशाल्लाह रुकते हैं इस पे कि ये जो आखिरी आयतें हमने दो पढ़ी, आयत 31 32, जिसमें इन कुंतुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। आज इस पे ज़्यादा बात मैंने इसलिए नहीं की कि आगे हमारा ये मौजू बहुत मुस्तकिल चलेगा, आज इशारे दिए, लेकिन इस आयत को आयत महन कहते हैं। मीम हा नून, इम्तिहान है ना, तो ये महन है। महन का मतलब क्या, चेकलिस्ट, आपका मेरा इम्तिहान है, यानी किसी के ईमान का इम्तिहान या चेकलिस्ट क्या है कि वो नबी की कितनी इत्तबा करता है। 31 आयत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह। ये आयत पे तो बहुत दर्स भी है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं ना, ये रास्ता है अल्लाह की मोहब्बत का, और वो क्या कि नबी से प्यार करो, नबी की सुन्नतों पे चलो, नबी के तरीकों पे चलोगे तो अल्लाह सुबहाना ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात है, मशरूत अल्लाह की मोहब्बत। आज तक मुझे और आपको क्यों नहीं मिली, कम मिली, ज़्यादा मिली, इसका वजह हमारा नबी के तरीकों पे चलना है। तो खुद को सिक्योर कर लें। मैंने कल ये चीज़ बहुत शिद्दत से महसूस की कि जब हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के नबी के तरीकों पे करते हैं तो हमारे पूरे दिन में कितनी बरकत होती है। और कभी आप इससे ऑपोजिट चाहे यही सोच के करें ना कि मुझे आराम और मिल जाए, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैं थोड़ा और सो जाऊं, तो आप देखेंगे कि उस पूरे दिन की बरकत जो है वो खत्म हो जाती है। आप देखिए कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की बात की गई है, और इत्तबा इताअत से बड़ा दर्जा होता है, ये बात तो हमने देख ली थी। लेकिन अगर हम यहाँ ये चीज़ देखें कि दुनिया में अमूमन हम इत्तबा और इताअत के फ़र्क को कैसे लेते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं जो मॉडलिंग करते हैं, एडवर्टाइजर्स, कैटवॉक, क्या करते हैं वो, मुंह से बोल के कहते हैं कि हमें फॉलो करो, जो हम पहनते हैं तुम भी पहनो, ऐसा नहीं करते ना। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह लोग दुनिया में जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं ना, उनकी पहनी हुई चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, उनके तरीकों पे खाना, इवन आपको उस पसंद आए ना आए, लेकिन आप कहते हैं फलाने ने ये चीज़ खाई थी तो मैं भी खाती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने इधर एक इतना सेट किस्म का क्राइटेरियन दे दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूल से मोहब्बत करो। और रसूल से मोहब्बत का तकाजा क्या है, कि वो तुम्हें बोले ना बोले, तुम्हें कहे ना कहे, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफिल है, सुन्नत मौकदा है, करूँ कि ना करूँ, करूँगा तो क्या सवाब, ना करूँ तो क्या गुना, ये ना पूछो। कभी हमने नहीं किसी से पूछा कि अच्छा वो फलां अदाकारा जो पी रही थी, अगर मैं ना पीऊँ तो क्या गुना होगा, आपका दिल करता पीते हैं, जिनको केयर नहीं होती वो उनको देखते भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि जिस तरह किसी अपने प्यारे से कोई मिलता जुलता हमें दिखे। आप परदेश में बैठी हैं और आप सोचें कि कोई आपकी दोस्त या कहीं आपको राह चलते कोई ऐसी सिस्टर दिखे कि जिनकी शक्ल आपकी बहन से मिलती है, और वो बहन जिसको आप पिछले 6 साल से नहीं मिल चुकी, सच बताइए कि उस रिजेम्बलेंस की वजह से क्या वो आपको औरत अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी ना। बस इससे समझ लीजिए, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेम्बल करते हैं ना, तो हम अल्लाह को प्यारे लगते हैं। अल्लाह को अपने नबी से बहुत ज्यादा प्यार था। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत नबी के तरीकों से गुजार के रखी है। जब तक ये चीज हमें समझ नहीं आएगी, बात नहीं बनेगी। जो लोग दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनना चाहते हैं, तो अल्लाह को उन पे प्यार आता है। अब ये मेरा और आपका फैसला, क्या युहिब्बुकुमुल्लाह की कोई कदर है? मोहब्बत भी तो हम उन्हीं की लेते हैं ना जिनसे हमें मोहब्बत होती है। आगे आप देखेंगे कि अल्लाह की मोहब्बतों की बड़ी बातें होंगी। छठा पर, अल्लाह युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुइल्ला मन जुलिम। तो अल्लाह की मोहब्बत बंदे मोमिन के लिए एक दौलत होती है, एक बहुत बड़ी दौलत होती है। इसको पाने के लिए वो नबी सल्लम के तरीकों पे चलता है। और जिस तरह के लोग सिंगर्स और मॉडल्स और एडवर्टाइजिंग जो भी लोग करते हैं उनके पीछे चलते हैं, कोई बोल बोल के नहीं मुंह से बताता कि अच्छा हमें मानो ना मानो, लेकिन जिनको वो अच्छे लगते हैं वो उनको देखते हैं। आप देखिए कि आज दुनिया में जो मशरूब आम है ना, बहुत सारे मशरूब आम है, जिसमें एक काले रंग का मशरूब ऐसा है कि जिसको बाज लोग अपनी जिंदगी कहते हैं। आपको पता है कि ये कैसे शुरू हुआ था? जब ये चीज बनी थी तो कई साल तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इंशाल्लाह 8वें पारे में हम पढ़ेंगे ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल के अंदर थोड़ी सी इसकी बातें, लेकिन सिर्फ आपको इस वक्त बताना चाहती हूँ कि इत्तबा का कितना गहरा असर होता है। आखिर जब वो कंपनियां बैंक करप्ट होने लगी और उनको लगा कि हमारा प्रोडक्ट लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, उस वक्त फिर किसी के मशवरे के साथ कि आप ऐसा करें कि ये सोडे के कैन जो हैं ये फेमस गुलूकार अदाकार उनके हाथों में दिखाएं और वो लोगों को पीता हुआ दिखाएं। ये सिगरेट, आपको क्या पता है कि ये सिगरेट लोग पहले पीते थे? कौन है जो अपने लिए जहर ले? तो वो उन्होंने फिर हायर किया एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, और ये चीजें वो उनको कर करके दिखा रहे थे, जिसकी बुनियाद पे ये चीजें पब्लिसाइज हुई। बस लोगों ने सोचा कि हीरो सिगरेट पीता हुआ कैसा लगता है, तो मैं कोई किसी हीरो से कम हूं। तो हम सब मुसलमानों के लिए ये नुकता है। आप देखिए कि सारा साल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का है, इताअत का भी है, इसमें कोई दिन रात मुकर्रर नहीं है। लेकिन खास तौर पे जब रबी अव्वल आता है तो हमारे यहाँ मोहब्बत का इजहार बहुत किया जाता है। अगर आप अभी से अपने दिल को इस कोर्स के साथ इस चीज़ पे माइल कर लें कि मैंने इंशाल्लाह इस साल अब से लेके रबी अव्वल के एंड तक खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना है। बहुत कुछ इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा चुका है, किया जा चुका है, कुछ सीरीज इंशाल्लाह शुरू भी होंगी, इसमें हम लोग करेंगे। आपको भी यहाँ हम इत्तबाए सुन्नत के मिसाइल बुक पढ़ाएंगे। जब तक नबी का मुकाम नहीं समझ आएगा, आपको दीन की रूह नहीं समझ आएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी पसंद नापसंद के पैमाने बदल दे। आज जिस तरह से हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं उन पे हमारी नजरें हैं, इसी तरह हमारी अल्लाह ताला के नबी के ऊपर हो जाए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। यहाँ पे सबक पूरा हुआ, एक तो पढ़ दो इनके जल्दी से। ये चंद कमेंट्स आपकी तरफ से हैं। अपने अमल को दुरुस्त करना है ताकि अकीदा भी दुरुस्त रहे, ख्वाहिशात और अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नक्शे कदम पर चलना है। जब अकीदे बिगड़ते हैं तो अमल बिगड़ जाते हैं, अकीदे का ताल्लुक अमल से है। इत्तबा के दर्जे पर ज़िंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान अता करे कि इताअत के इत्तबा करना भी आसान लगे, तब ही जीने का मकसद समझ आएगा इंशाअल्लाह। अकीदे की पुख्तगी ईमान को कामिल बनाती है, ये सोच हमारी ज़िंदगी का सुनहरी असूल होना चाहिए इंशाअल्लाह। शुक्र है इस ज़ात का जिसने आज मेरी तरजीहात को बदल दिया। कल मैं रातों को उठकर टीवी कंप्यूटर देखती थी और सो ऑन, आज अल्लाह ताला के रहम से कुरान ही खुलता है। कम अज़ कम लौह से दूर हो गए, और भी कोशिश जारी है। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आमीन। हर रोज़ की तरह आज भी शर्मिंदगी हो रही थी कि कि अपने आप को सुधारने की कितनी जरूरत है। शर्मिंदगी से सर झुकता जा रहा था और अहद कर रही थी कि अपने अंदर के बुत तोड़ने हैं और अल्लाह के बताए हुए दीन में पूरे का पूरा दाखिल होना है और इंशाल्लाह घर वालों को भी करना है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आसान फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين